نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. اچھا آگے اب گھر کی پرائیویٹ لائف سے متعلق کچھ باتیں ہیں کہ کس طرح ہمیں ایٹیکیٹ سکھائے گئے ہیں, کیسے ہم نے جب کوئی ہمیں بلائے کسی کے گھر جانا ہے تو کیا ہماری تمیز ہونی چاہیے, کیا مینرز ہونی چاہیے. اور ان آیات سے جو یہ اگلی آ رہی ہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی نوٹس لیا اور ہمیں سکھائی ہیں. جیسے ماں باپ بھی بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھاتے ہیں نا, بیٹے ایسے تمیز سے بیٹھنا ہے, ایسے چلنا ہے, ایسے نہیں بولنا, ایسے نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے ایسی ہر چیز کو جس سے کہ دوسرے کو کوئی اذیت پہنچ سکتی ہو اللہ تعالیٰ نے اس کا نوٹس لے کر اور قرآن کریم میں ہمیں سکھایا کہ کس طرح ہم نے جب یہ معاملات کرنے ایک دوسرے کے ساتھ, کسی گھر مہمان بننا ہے تو کیسے بننا ہے. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات ہو رہی ہے لیکن اس سے باقی تمام لوگوں کو بھی سکھایا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی مسلمان کے گھر پہ جائیں تو پھر کیسا ان کا معاملہ ہونا چاہیے. پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس آیت کا بتا دوں. بخاری شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جہاز سے, آپ جن کی بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت زید کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا اور پھر طلاق دے کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ نکاح کر دیا تھا, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ نکاح ہوا تو لوگوں کی دعوت کی, یعنی ولیمے کی دعوت. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ولیمہ کرنا سنت سے ثابت ہے. ہاں ولیمے کی ٹائمنگ میں کچھ اختلاف ہے, بعض کچھ علماء کہتے ہیں کہ نکاح جس وقت مقرر ہو اس وقت ہی کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ یہ بات ہے جو سنت سے ثابت ہے کہ جس وقت یعنی رخصتی ہو جائے اس وقت ولیمہ کیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب سے نکاح کیا تھا تو لوگوں کی دعوت کی, وہ کھا پی کے باتوں میں بیٹھے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کی تیاری بھی کی پھر بھی وہ نہ اٹھے, یعنی جیسے ہوتا ہے کہ بندہ کبھی اٹھنا کرتا بھی ہے پھر بھی مہمان بیٹھے رہتے ہیں, یہ دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے. آپ کے ساتھ ہی کچھ لوگ تو اٹھ کے چل دیے لیکن پھر بھی تین آدمی ایسے تھے کہ بیٹھے ہی رہ گئے اور باتیں کرتے رہے. پھر ہوا یہ, حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے گھر پہ گئے اور وہاں سے چکر لگا کے بھی آ گئے, جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ان کے پاس گئے, ان کو ان کے پاس کچھ ٹائم بیٹھے, واپس بھی آ گئے تب بھی وہ لوگ وہیں بیٹھے ہوئے تھے. یعنی کتنی ایک اذیت کی بات ہے. جب یہ لوگ چلے گئے تو حضرت انس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی, پھر آپ گھر تشریف لائے. اور اس وقت حضرت انس فرماتے ہیں میں نے بھی جانا چاہا, یعنی آپ کے گھر میں, تو آپ نے اپنے اور میرے درمیان پردہ کر لیا اور یہ آیت اتری تھی اس وقت. اور روایت میں یہ بھی آتا ہے اس موقع پر گوشت اور روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلائی تھی اور حضرت انس کو بھیجا تھا کہ لوگوں کو بلا لیں, لوگ آتے تھے کھاتے تھے اور واپس جاتے تھے. جب ایک بھی ایسا نہیں بچا جسے حضرت انس بلاتے تو آپ کو خبر دیا, آپ نے فرمایا آپ دسترخوان بڑھا دو یعنی اٹھا لو. لوگ سب چلے گئے لیکن تین آدمی باتوں میں لگے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل کر حضرت عائشہ کے پاس گئے, فرمایا السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی نئی بیوی کیسی ہیں, خوش تو ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تمہیں برکت دے. اس طرح آپ اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے اور سب جگہ یہی باتیں ہوں. اب لوٹ کر جو آئے تو دیکھا وہ تینوں صاحب ابھی تک گئے نہیں تھے, لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی حیا تھی, مروت بہت زیادہ تھی, اس لیے آپ نے کچھ نہیں فرمایا. پھر گئے حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف چلے. اب پھر اس کے بعد کسی نے آ کے خبر دی کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں تو پھر آپ آئے. और उस वक्त आपने चौखट में कदम रखा ही था कि ये आयत नाज़िल हुई। ठीक है, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ला तदखुलू बुयूतन नबी, ना तुम दाखिल हो घरों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ना दाखिल हो, मतलब क्या, ये नहीं कि कभी जाना ही नहीं है, मगर किस तरह से बताया गया, इल्ला अन युज़ना लकुम इला तआम, चूंकि ये एक खास सिचुएशन के मौके पर नाजिल हुई है ये आयत, इसलिए इस में बताया गया कि जब तक कि इजाजत ना दी जाए तुम्हारे लिए खाने की तरह, जब तक आपको इजाजत ना दी जाए, यानी जब तक कि आपको खाने के लिए इनवाइट ना किया जाए, ऐसे ही खाने के लिए नहीं चले जाना। जैसे उस जमाने में बार दफा ऐसे होता था कि लोग कहीं जाते थे कि जी घर अब खाने का टाइम हो गया तो खाने के टाइम पे चले गए, या फिर ये भी होता था कि खाने का टाइम होने लगा तो बैठ ही गए, बैठे भी इंतजार कर रहे हैं कि चलो अब खाना लग ही जाता है तो फिर ही खाना खा के ही अब जाएंगे, तो ऐसा नहीं। आपको जब इजाजत दी जाए, हमने सूरह नूर में पढ़ा था ना आयते इस्तेजान, कि जब इजाजत हो तब जाओ किसी के घर में, इजाजत लेकर जाओ, ऐसे ही नहीं कि आज हमके जी हम सरप्राइज दे रहे थे आपको, हम ये सरप्राइज भी आपके लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन हो सकता है घर वाले उस वक्त किसी ऐसे काम में मशगूल हैं, कुछ इस तरह से हैं कि वो आपको इस वक्त एंटरटेन नहीं कर सकते, या अभी उनकी कोई तैयारी नहीं है आपके लिए, अब इस वक्त उनको आपका आना कोई ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इजाजत पहले लो, चाहे दूर से आ रहे हैं चाहे करीब, इजाजत लो फिर उसके बाद जाओ। ये देखें, ये दावत के और मेहमानी के जो असूल इस आयत में दिए गए ना, ये सारे मुसलमानों के लिए, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों के लिए नहीं है, आपके तो घर के लिए यहाँ पर फरमा दिया गया, सब सब के लिए एक नमूना है, एक तो बगैर इजाजत के ना जाओ। ठीक है, दूसरी बात क्या है, गैरा नादिरीना इना हो, ना इंतजार करने वाले हो इसके पकने का, ताम के पकने का इंतजार ना करो, है ना, आप यानी पहले से इतनी जाके बैठ ना जाओ कि आप जाके बैठ गए, आप अगर दावत पे भी बुलाया हुआ, अगर नहीं दावत पे बुलाया हुआ तब तो इंतजार करने की जरूरत ही नहीं कि लग रहा अभी खाना कुछ बन रहा है किचन में, कुछ बर्तन वर्तन की बजने की आवाज आ रही है तो खाना लग रहा लगने ही वाला है लगता है, तो फिर थोड़ी देर और बैठ जाते हैं, खाना खा के ही जाएंगे, इस तरह से चीज नहीं। अगर आपको दावत पे भी बुलाया गया तब भी ऐसे ना करो कि पहले से जाके बैठ जाओ उनके घर पे, वो बेचारे जाहिर है जब दावत उन्होंने की होगी घर में तो उसका इंतजाम कर रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो फारिग बैठे होंगे, अब आप उन्होंने इंतजाम भी करना है कि वो कोई तैयार भी होंगे, अब आपको अगर मिसाल के तौर पर 5 बजे बुलाया तो आप 4:30 ही उनकी बेल कर रहे हैं कि हमने सोचा हम जरा जल्दी चले जाते हैं, हमने सोचा हम आपकी हेल्प कर देंगे, अगर आपने हेल्प भी करनी है ना तो आप इजाजत लेकर जाइए, देखिए हम चाह रहे हैं कि आपकी हेल्प करें, उसके लिए क्या हम आधा घंटा पहले आ जाएं, अगर तो वो आपको इजाजत देता है तो तब जाएं शौक से, अगर नहीं देता तो फिर आप मत इस तरह से जाके उनको सर पे सवार हो जाएं पहले से। ठीक है, तो ये एटिकेट हमें सीखने हैं। फिर और क्या एटिकेट बताया, वलाकिन इजा दुआई तुम, लेकिन जब बुलाए जाओ तुम यानी दावत के लिए, फदखुलू तो दाखिल हो जाओ, फइजा ताइम तुम फंतशिरू, फिर जब खाना खा लो तो मुंतशिर हो जाओ, यानी जाओ अपने अपने घरों को, वला मुस्तानिसीन अली हदीस, तो ना मशगूल होने वाले बनो बातों के लिए, अब ऐसा नहीं है कि वो आपको बुलाए और एक तो पहले से चले गए उसके बाद भी खाना खा के उठने का नाम नहीं ले रहे, अब दूसरे बंदे ने हो सकता है कि अपना जो किचन समेटना हो उसने हो सकता है आराम करना हो, वो थक गया हो इतना इंतजाम करने के बाद, और लोग हैं कि वो बातों में लगे और कहते हैं हम तो बहुत लेट सोते हैं इसलिए लिहाजा अब हम बैठे ही रहेंगे, वो गपशप उनकी शुरू हो गई है, आप गपशप खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, तो देर तक बैठे रहना मेजबान के लिए बाय से तकलीफ हो सकता है, इसलिए मना किया गया कि आप आए हो खाना खाया उसके बाद आप जाओ। हाँ ये अलग बात है कि मिसाल के तौर पे किसी ने ऐसे ही बुलाया, मतलब किसी मीटिंग के लिए बुलाया किसी उसके लिए, अब आपने खाना खाया उसके बाद अब डिस्कशन होगी मीटिंग पे या कोई और बातें होंगी तो वो उसकी इजाजत है फिर, लेकिन या आपको वो जबरदस्ती बिठा रहा है मिश्रा ने कि वो कोई औरत है वो कह रही है अभी तो मैं फारे होके मैं भी बैठी हूँ, सुबह से तो मैं किचन में लगी हुई, तो अब आप मेरे पास तो थोड़ी देर बैठे, फिर आप थोड़ी देर बैठ गए, इस तरह की बात हो तो अलग बात है, लेकिन खुद भी कॉमन सेंस यूज करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं मेरे बैठने से इनको अजियत ना हो रही हो। अपना ही नहीं सिर्फ देखना चाहिए कि हमें तो बड़ा मजा आ रहा है, अब ये अब एक के बाद एक दौर चल रहा है, अब ऐसे भी एक खाना भी खा लिया, अब दूसरा भी हो गया, दोपहर को किसी ने बुलाया हुआ है, खास तौर पे दोपहर को बुलाने वालों का, तब बेचारे कुछ लोग तो मेरे ख्याल तंग आके वो कहते हैं रात को देर से ही बुलाओ ताकि जल्दी तो जाए, अगर बुला लिया 6-7 बजे तो इन्होंने तो 10-11 से पहले तो जाना नहीं, इसलिए बेहतर है कि 8 बजे बुलाओ ताकि 11 तक तो चले जाए, तो वो जाहिर है फिर लोग अवॉइड करने लगते हैं। तो ये नहीं है कि दोपहर को किसी ने बुलाया, 1 बजे बुलाया, रात के 6-5-6 बजे और आप बैठे ही हुए, अब दूसरा बंदा फिर आप शाम की चाय का इंतजाम कर रहा है, फिर वो आ रहा है, फिर वो उठ रहा है, फिर वो काम कर, ये अब लोगों को सोचना चाहिए जो मेहमान है कि वो ऐसा मामला ना करें कि दूसरे की अजियत का बाइस बन जाए, क्योंकि देखिए इससे क्या होगा कि उसको जब अजियत होगी तो उसके दिल के अंदर तंगी पैदा होगी इन मेहमानों की तरफ से, वो उसको अच्छा महसूस नहीं होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं चाहे, लेकिन जब लोग इनको इग्नोर करते हैं तो आपस की रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने इसीलिए इन चीजों तक को एड्रेस किया कि देखिए आपकी वजह से अगर मेजबान को तकलीफ पहुंच रही है, वो नहीं भी कुछ कहता मुरब्बत में, तो फिर भी बाद में तो वो 100 दफा तौबा करेगा बुलाने से पहले, वो कतराएगा आपसे, दोबारा नहीं बुलाएगा, और उसके दिल में एक तंगी तो पैदा हो जाएगी ना आपके लिए, और अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि आपस में लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए रंजिशें हों। तो इसलिए जब किसी ने बुलाया हो तो उसकी रायत करो, उसको इसको ऐसे ना करो कि जिससे वो उसको तंगी हो जाए, उसको तकलीफ पहुंचे, ये काम ना करो। इसी वजह से इस तक बात को यानी इस बात तक को यहाँ पे मेंशन किया गया कि आप खाना खा चुके तो अब आप जाएं। अब खाना ये इस चीज को ना समझे कि अब इसके घर में तो हम घुस गए हैं, अब निकाल तो ये सकता नहीं, अब आ तो गए, अब हम भी पूरा पूरा फायदा उठा के ही जाएंगे, ये नहीं करना चाहिए। देखिए कहने को हम से ये सोचते हैं कि आज हम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जमाने में हैं और हम बड़े बहुत मैनर्ड हैं, बड़े कल्चर्ड हैं, लेकिन आप देखते हैं कि इन बेसिक मैनर्स का भी अक्सर ख्याल नहीं रखा जाता। हम कहते हैं हम 5 मिनट के लिए आपका टाइम चाहते हैं, चाहे वो फोन पे बात हो, चाहे वो घर पे किसी के जाना हो, वो 5 मिनट 50 मिनट से कम नहीं होते, बस मैंने 5 मिनट की बात करनी, बस मैंने 2 मिनट की बात करनी, वो 2 मिनट जो होते हैं वो 20 मिनट होते हैं, जो 5 मिनट होते हैं वो 50 मिनट होते हैं। अब कितनी आपने दूसरे को अजियत दी। तो घरेलू माशरत के आदाब सिखाए जा रहे हैं, दूसरों के घरों में इजाजत लेकर दाखिल हो, पहले आप पूछ लें, और फिर अगर आपने 5 मिनट का कहा तो फिर 5 मिनट ही लेना, ये नहीं है कि फिर अब आप बस घर में चले गए तो अब उठने का नाम नहीं लेना, और फिर वहां पे ये ना इंतजार करें कि दूसरा अब खाना पक रहा है तो अब खा के जाए। देखिए बार दफा ऐसा होता है कि कोई औरतें हैं, आप उनके घर पे गए हैं, चलो चाहे इजाजत लेके ही गए थे, अब टाइम हो गया, उनके हस्बैंड आ गए हैं, वो हस्बैंड को खाना दे रही हैं, कुछ है, चाहे आपने नहीं भी खाना और आपको कोई मसला नहीं है, आपको खाने के लालच में नहीं बैठे हुए, लेकिन जब आप देख रहे हैं घर वाली उसमें बिजी है, क्या ये तकलीफ देना नहीं है कि वो एक परेशान है कि मैं इसको भी टाइम दूं, उसने हस्बैंड को खाना भी देना और हम वहीं बैठे हैं, अब हम उठने का नाम ही नहीं ले रहे, अब वो कह रहे हैं हाँ जी आप भी खाना खा ले, अब हम ना नहीं नहीं हमने तो नहीं खाना खाना, हम तो खा के आए, अच्छा लेकिन बैठे हमने रहना, तो आप जाए ऐसे ऐसी तरीके, यानी ये अहकाम किस चीज के बारे में है कि एक के रवैये से दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे, ये मैसेज है इनमें, जरूरी नहीं एग्जैक्ट सेम चीज हो कि मैं देर तक नहीं बैठती हूँ, आप इसके गिर्द इर्द गिर्द होने वाली आप असल जिस्ट को समझे, क्या है जिस्ट, इस आयत की जिस्ट क्या है, इसका खुलासा क्या है, इसका निचोड़ क्या है, कि दूसरों की फीलिंग का ख्याल रखो, किसी को अपनी वजह से अजियत मत दो, ठीक है, किसी को आपकी वजह से तकलीफ ना पहुंचे, किसी के घर खाने खाने का मतलब ये नहीं कि धरना ही मार के बैठ जाओ अगर कोई दावा तुम्हें बुला के भूल ही गया तो अब आप उसके घर से रुख सकती ना हो। तो बुलाया ना हो खाने पे तो एन खाने के टाइम पे भी ना आ धमके कि उनके घर पहुंच गए, ये भी बदअखलाकी की बात है। अब वो पता है कि ये खाने का टाइम है दूसरों का, तो अब आप वहां पे खड़े। अच्छा, अब आपने बाहर से ही आपको पता चल गया है कि अंदर लोग खाना खा रहे हैं, तो मत अब जाएं उनके घर के अंदर। और उन्होंने दरवाजा खोल ही दिया आपके लिए गलती से, तो कोई इंसान वहीं से वापस चला जाए कोई बात कह के। ये नहीं कि मैं अंदर जाके बैठती हूँ, नहीं, मैं खाना तो मैंने नहीं खाना, लेकिन मैं बस बैठ जाती हूँ यहाँ पे, मैं आपका इंतजार करती हूँ। तो ये तो आप देखें, अंदाजा करें कि ये घराना कौन सा था जिसकी बात यहाँ पे हो रही है। बुयूत नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की बात हो रही, घरों की, जो जितनी भी बीवियों के घर थे उनकी बात हो रही, जहां पे आना हर बंदा बरकत का बायस समझता था, हर बंदा आपसे मोहब्बत करता था, हर बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत चाहता था, आपके साथ बैठना चाहता था। फिर भी उनको मना किया गया कि ये ऐसी चीज नहीं है, आप उनको तकलीफ ना तो देखें, अगर इस तरह से लोग आएंगे उनके घर बैठे ही रहेंगे, कभी एक आ रहा है कभी दूसरा आ रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बाकी जो आपकी जिंदगी थी, मसरूफ जिंदगी थी, और हर हर वक्त आपका कैलकुलेटेड था, आपकी जिंदगी कोई फारिग जाया करने के लिए नहीं थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने और काम कैसे करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे सबको एटिकेट सिखाए गए कि अपनी वजह से दूसरे को दुख ना दो, बगैर बताए बगैर इजाजत के किसी के भी घर नहीं जाना, ना खाने के वक्त का इंतजार करना है, ना खाने के टाइम पे पहुंचना है, ताकि आप लोगों के दिल आपस में मिले रहें। फिर उसके बाद जब आपको खाने के लिए बुलाया गया है, होस्ट आपको सर्व कर दे, आप खाना खा लें, तो उसके बाद होस्ट को अपनी वजह से तकलीफ ना दें लंबे आवर्स तक बैठ के, ना ही पहले से जाके उनको तकलीफ दें। अच्छा, अगर इसमें तकलीफ नहीं दी जा सकती तो ये तकलीफ देना सही है कि जब किसी के घर जाएं तो आपके बच्चे चीजें उनकी तोड़ रहे हैं, उनके कारपेट पे कोल्ड ड्रिंक गिरा रहे हैं, उनके घर में एक शोर हंगामा किया हुआ, अजियत दे रहे हैं सबको, लेकिन आप जो खामोश बैठे हैं, क्योंकि अब आप ये मेजबान का ही काम है कि वो बेबी सिटिंग भी करे मेरे बच्चों की, वो मुझे सर्व भी करे और मैं बच्चों से भी फारिग होके बैठ जाऊं। मैं तो रिलैक्स करने आई, मेरे गपशप करने आई, मैं अब बच्चों को देखने थोड़ी आई। बच्चों को भी खुला छोड़ दिया, वो जो मर्जी करते, फिर जब जाते हैं तो पीछे से लोगों का नुकसान किया होता है, उनके बाथरूमों को बुरी तरह यूज किया होता है। कैसे कि किस किस तरह आप अंदाजा करें कि मेहमान अजियत का बायस बनते हैं मेजबान के लिए। जिसने आपको मोहब्बत से बुलाया होता है, क्या उसके बाद उसको नुकसान देने का सबब बनना चाहिए मेहमान को कि वो आइंदा के लिए तौबा कर लेके आप नहीं बुलाना, या वहां पे बैठ के ऐसे ओछे मजाक करना, दूसरों की फीलिंग्स हर्ट करना, जिसके अंदर ऐसी चीजें हों कि दूसरा तकलीफ महसूस करे, दूसरों को टीज करना, ये चीजें करना, इनसे भी दूसरों को तकलीफ पहुंचती। जैसे मैंने आपको बताया कि इस आयत की निचोड़ को समझें, आप ये ना सोचें सिर्फ कि ये बारीक काम तो मैं नहीं करती इसलिए नहीं, असल बात यहाँ पे ये है कि मेरी जात से ना किसी को तकलीफ पहुंचे। जब इस किस्म के मजाक किए जाते हैं, लोगों की फीलिंग्स का ही ख्याल नहीं किया जाता, और एक बंदे को लेकर निशाना बनाया जाता है, सारे गैंग अप हो जाते हैं और उसके ऊपर जो बातें करना शुरू करते हैं, और या फिर ताने और तशने शुरू करते हैं, या फिर उसके बाद उस घर की जाके बुराइयां लोगों में करने लगते हैं जिस घर से दावत खा के आए हैं, उनकी तो ये चीज ऐसी थी और वो चीज इतनी घटिया थी और वो चीज इतनी गंदी थी और वो चीज ऐसी थी और उन्होंने तो ऐसा किया, ये क्या अजियत देना नहीं है? ये सब अजियत देने की बातें। तो ये आदाब हमने सीखने सोशल लाइफ के। अल्लाहु अकबर। अब ये देखें, दूसरे को यहाँ पे, अच्छा आगे पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं। इन्ना ज़ालिकुम काना युज़िन नबी, ये बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देती हैं। यानी और उस वाक्य से सोचें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी अजियत हो रही थी। कि देखें, किसी वक्त किसी के आराम का वक्त होता है, किसी की इबादत का वक्त होता है, किसी अब जो मेहमान जाके बैठ जाए और उसके बाद चाहे वो रहने वाले क्यों ना मेहमान, अच्छा रहने वाले मेहमानों का भी सुन ले जो कि स्टे ओवर करने के लिए आते हैं, तो याद रखिए चाहे आप, हम तो कुरान सीख रहे हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम कम अज कम दूसरों को, तो जिनको नहीं समझ नहीं पता वो तो अलग बात है, हम कम अज कम ये बात याद रखें 3 दिन के बाद मेहमान नवाजी खत्म है, फिर तो आप ऐसे ही हैं जैसे घर के फर्द होते हैं। फिर ये नहीं है कि बस लेटे रहें और लेट के उठे मुझे यहीं पे सर्व करें, मुझे चाय मेरे बिस्तर में आके दी जाए और मेरे मैं बस मेहमान बन के बैठी रहूं सेट होके सोफे के ऊपर और घर के अफराद काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो जी मेहमान हूँ। अब आप तो आए हैं छुट्टियां गुजारने के लिए 10 दिन के लिए 12 दिन के लिए, अब 10-12 दिन आप मेहमान ही बने रहेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। अब वो घर वाला क्या है, वो काम भी करे खाना भी पकाए आपको टाइम भी दे आपको शॉपिंग भी कराए आपको सैर भी कराए, ये फेयर नहीं है। इस्लाम में सिर्फ 3 दिन की मेहमान नवाजी होती है, उसके बाद नहीं कोई होती, उसके बाद सदका है, वो जो कर रहे हैं उनकी तरफ से एक नेकी है, ठीक है। यहां तक हमें बताए गए हैं हमारे दीन ने एटिकेट। अब हम क्या करते हैं कि जब पहले तो हम इतने दिन के लिए किसी के मेहमान बन जाते कि उल्टा उनके ऊपर जहमत बन गए, 15 दिन 20 दिन के लिए चले गए किसी के घर, हम तो यहाँ पे सैर करने आए। माँ बाप के घर जाना अलग बात है, वहां पे भी, लेकिन 3 दिन के बाद ये नहीं करना चाहिए कि अब मेरी भाभियां काम करें, वो मुझे सर्व करें, वो मेरे आगे लाके ट्रे रखें तो फिर ही मैं खाऊंगी, और अगर किसी ने मेरा ख्याल नहीं किया तो फिर हम मुंह बना के आ जाए आप लोगों ने तो मेरा ख्याल ही नहीं किया। तो 3 दिन के बाद तो ये चीज है ही नहीं है कि आप को इस तरह से सर्व किया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ये होता है कि अब हमारे पास बैठे रहे और हमें फुल टाइम दे, अब आप अपने सारे काम छोड़ दें क्योंकि हमने जो एहसान कर दिया कि हम आपके घर आ गए, अब आप कोई और काम नहीं कर सकते, बस सारा टाइम आप हमें ही एंटरटेन करते रहे, ये भी सही नहीं है। 3 दिन के लिए तो ठीक है, उसके बाद नहीं कि वो अपने सारे काम छोड़ दे और बस आपके साथ ही लगा रहे, उसने तो अपनी जिंदगी सारी खत्म कर दी। अब आप 15 दिन के लिए किसी के घर गए, उसकी तो 15 दिन की सारी एक्टिविटीज खत्म है, तो वो आपको ही टाइम देता रहे, ये भी दूसरे को अजियत देना है। उसके 100 काम होंगे, उसकी 100 चीजें होंगी, उसकी 100 अपॉइंटमेंट्स होंगी, लेकिन अब आपका चूंकि वेकेशन का टाइम है तो अब सबको सब काम छोड़ के बस आपकी सर्विस में लग जाना चाहिए, ये दुरुस्त नहीं है। इसके बाद फिर क्या होता है, क्या होता है जब मेहमान भी गिले शिकवे लेके चले जाते नहीं, हमें नहीं अच्छी तरह उन्होंने देखा, और मेजबान जो है वो बेचारा भी एक सूली पर लटका रहता है कि खुश होके ये जाए यहां से, कितनी ये गलत बातें। तो ये सब चीजों को हमें देखना है कि जब हम ये एक असूल को याद रखेंगे ना कि हमारी जात से किसी को अजियत ना हो, तो फिर हमें ये सब बातें आसानी से समझ आ जाएंगी कि हमें कैसे रवैये रखने। अब यहाँ पे देखें, अल्लाह ताला ने फरमाया ये बात नबी को अजियत देती है, तो उसके बाद फरमाया वयस्तही मिनकुम, तो वो आप लोगों से हया करते हैं, वो कोई आगे से बात नहीं कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हया की वजह से, इतनी आपने हया थी कि ये नहीं उनको कहा कि चलो चलो अपने घर जाओ काम करो अपने उठो यहाँ से, ये क्या तुम लोग फारिग बैठे गए, हमारे जैसे कोई हो तो इसी तरह की बातें कह के दूसरे को भगा दे, और इसमें हम बड़ी दलेरी समझते हैं, देखा अपने मुंह पे मैंने कह दिया था। आपने नोट एक बात करें, सुभान अल्लाह के अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं ये फरमाया कि आपको इतनी हया करने की क्या जरूरत, उनको आपको चाहिए कि उनको कहें कि यहां से जाएं, इसलिए कि हया होना जो है ना वो कभी काबिले मुजम्मत नहीं है, हया हमेशा अच्छी चीज है, याद रखें ये बात। और ये भी हया ही होती है कि इंसान मुंह फटो के लोगों के मुंह के ऊपर बातें ना मारे, ये भी हया होती है, समझ आई बात। हया सिर्फ ये नहीं है कि भाई मैंने ये कपड़े पहन लिए, मैंने अबाया स्कार्फ लगा लिया, मैं बड़ी हया वाली हो गई, हया बात में भी हया होती है, आपके एटीट्यूड में भी हया होती है कि इंसान के अंदर ये मुरव्वत हो। और हम जब दूसरे को मुंह फट होके मुंह पे चीजें दे मारते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं मैं तो हक बात कहती हूँ, भाई मैं तो सच्ची बात कहती हूँ, ये बड़ी अच्छी हक बात, तो हक बात तो ये भी थी। अब देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कह देते तुम फारिग हो तुम यहां से जाओ, ये कोई बात नहीं होती, इसका मतलब हया की कमी है। बाद लोग दूसरों को कहते हैं तुम क्या, तुमने ये जवाब देना था, तुमने ऐसे उसको कहना था, लेकिन ये फिर क्या होता है, हया की कमी। हया अच्छी चीज है अगर किसी के अंदर है और वो नहीं दूसरे को इस तरह की बातें कहता,